जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। तात्पर्य, यदि कोई चंद्रमा सूर्य या अन्य ग्रह को जाना चाहता है तो वह अपने कर्तव्य को संस्कृत विशिष्ट वैदिक नियमों का पालन करके प्राप्त कर सकता है। इसका विशेष वर्णन वेदों के कर्मकांड अंश दश पौर्णमासी में हुआ है, जिसमें विभिन्न लोगों में स्थित देवताओं के लिए विशिष्ट पूजा का विधान है। इसी प्रकार विशिष्ट यज्ञ करके पितृलोक प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार मनुष्य भूत प्रेत लोकों में जाकर यक्ष, रक्ष या पिशाच बन सकता है। पिशाच पूजा को काला जादू कहते हैं। अनेक लोग इस काले जादू का अभ्यास करते हैं और सोचते हैं कि वह अध्यात्म है, किंतु ऐसे कार्यकलाप नितांत भौतिकवादी हैं। इसी तरह शुद्ध भक्त केवल भगवान की पूजा करके निस्संदेह में कुछ लोग तथा कृष्ण लोक की प्राप्ति करता है। इस श्लोक के माध्यम से यह समझना सुगम है कि जब देवताओं की पूजा करके कोई स्वर्ग प्राप्त कर सकता है तो फिर शुद्ध भक्त कृष्ण या विष्णु लोक क्यों नहीं प्राप्त कर सकता। दुर्भाग्यवश अनेक लोगों को कृष्ण तथा विष्णु के दिव्य लोकों की सूचना नहीं है, अतः न जाने के कारण वे नीचे गिर जाते हैं। यहाँ तक कि निर्विशेषवादी भी ब्रह्मज्योति से नीचे गिराते हैं। इसलिए श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन दिव्य सूचना को समूचे मानव समाज में वितरित करता है कि केवल हरे कृष्ण मंत्र के जप से ही मनुष्य सिद्ध हो सकता है और भगवत धाम को वापस जा सकता है। अनुवाद को दोहराइए, बार बार चर्चा करेंगे और भी चर्चा करेंगे, क्योंकि यह सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इन चीजों को हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए ताकि हमारी श्रद्धा कृष्ण भक्ति में बढ़ जाए और ताकि हम दूसरों को भी समझा पाए और ताकि हम ठीक से समझें कि हमें कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, कौन से कार्य करना उचित है और कौन से कार्य करना उचित नहीं है। तो अब तक तीन चार प्रवचन हो चुके हैं देवी देवताओं के विषय के ऊपर, तो और शायद दो तीन प्रवचन इस विषय के ऊपर होंगे जिसमें इस विषय को हम अलग अलग दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करेंगे ताकि हमारे मन में ये बातें अच्छी तरह से बैठ जाए। यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि अलग अलग उपासकों की अलग अलग गति होती है। ऐसा नहीं है कि सारे उपासक एक ही गति की प्राप्ति करते हैं। ये संसार में थोड़े लोग देवी देवताओं की उपासना करते हैं तो वो देवताओं के लोग में जाते हैं, थोड़े लोग भूत प्रेत पिशाच की पूजा करते हैं तो वो उनके लोग में चले जाते हैं, थोड़े लोग पितरों की पूजा करते हैं तो पितृलोक में चले जाते हैं, और बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कृष्ण की उपासना करते हैं और अंततः वो कृष्ण के लोक में चले जाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान यह समझा रहे हैं कि हमें भेद करना चाहिए, किसकी उपासना करनी चाहिए और किसकी नहीं करनी चाहिए, ये स्पष्ट रूप से हमें जानना चाहिए। ईश्वर परिषद में बताया गया है, अन्य संभवान अन्य आहु असंभवान यदि सूक्ष्म ये नक्षिरे। अगर हम उनकी उपासना करेंगे जिनसे सब कुछ उत्पन्न होता है उन्हें एक गति की प्राप्ति होगी या एक परिणाम मिलेगा। अगर हम उनकी उपासना करते हैं जो परम नहीं है, जो सब अभी चीजों के ऊपर स्थान नहीं है, तो हमें कुछ और परिणाम मिलेगा, कुछ और गति की प्राप्ति होगी। और इसलिए इस सत्य को हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए, सुनकर समझना चाहिए। यदि सुश्रव ये वैदिक पद्धति या आध्यात्मिक मार्ग जो है वो श्रवण के ऊपर आधारित है, तो जब हम सुनते हैं कहीं ज्ञान को तो हमें अच्छी तरह से पता चलता है कि परम भगवान कौन है और कौन नहीं है। तो यदि सुश्रव, लेकिन सुनना है तो किससे सुनना है? हीराणा, जो धीर लोग, ऐसे लोगों के परंपरा से हमें ज्ञान ग्रहण करना है, न कि हमारे पारिवारिक परंपरा से हम ज्ञान ग्रहण करें। हो सकता है कि पारिवारिक परंपरा से सही ज्ञान आता हो, लेकिन कह नहीं सकते। जब तक आप प्रामाणिक धीरों के परंपरा से ज्ञान का श्रवण नहीं करोगे, तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि पारिवारिक परंपरा आपकी चली आ रही है वो प्रामाणिक है या नहीं है। ज्यादातर ये देखा जाता है कि ये प्रामाणिक नहीं है, अर्थात पारिवारिक परंपराओं में ज्यादा जोर कृष्ण के ऊपर नहीं देते, सभी को एक समान मानते हैं। इसलिए सब जगह हम देखते हैं कि लोग कंफ्यूज है, कोई कहता है कृष्ण भी ठीक है, दुर्गा भी ठीक है, ये भी है, वो भी है, तो नहीं ठीक है, किसी का साथ नहीं करना चाहिए, इसे सभी की उपासना करना। उस प्रकार से स्पष्ट रूप से कोई बता नहीं सकता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन जब हम तीनों की परंपरा में ज्ञान प्राप्त करते हैं तो ये ईश्वर परिषद के श्लोक बताया जाता है, ये तक्षिरे विचक्षण, मतलब बहुत स्पष्ट रूप से हमें ज्ञान मिल जाता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या उचित नहीं है। इसलिए स्पष्ट ज्ञान जब तक हम प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हम ऐसे ही अवस्था में रहेंगे कि ये भी ठीक वो भी ठीक। ये श्री प्रभुपाद की सबसे बड़ी भेंट है सारे आधुनिक जगत के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से ये ज्ञान दिया है कि वो भी धीर है और वो भी धीरों की परंपरा में आ रहे हैं। इसलिए जो जनसाधारण मत है कि कोई भी उपासना करने से एक ही गति की प्राप्ति होगी, सब भगवान एक ही है, सब पक्ष एक ही है, किसी भी पक्ष में चलिए आखिर वही जाना है, ऐसी जो धारणाएं लोगों की होती है ये वास्तव में ठीक नहीं है, क्योंकि ये शास्त्र में बात नहीं बताई गई। और इसके लिए दृष्टांत है जो शायद आप पहले कई बार सुन भी चुके होंगे। एक रेलगाड़ी का उदाहरण, अगर आपको बेलगाम से दिल्ली जाना है तो ऐसा नहीं है कि आप बेलगाम रेलवे स्टेशन में जाकर किसी भी खिड़की में खड़े होकर जो टिकट वो देता है वो लेकर चले जाए, उसे बिना बताया कि आप कहाँ जाए। बेलगाम से कितने सारे गाड़ियां जाती हैं, थोड़े बंबई के लिए जाती हैं, थोड़े कोल्हापुर जाती हैं, फिर कभी जाती है, इधर उधर जाने वाले बहुत सारे। उस प्रकार से जब तक आप स्पष्ट रूप से ये नहीं जानेंगे कि आपका गंतव्य स्थान क्या है, कहाँ आपको जाना है, तब तक आप सही प्रकार की उपासना नहीं कर पाते, सही तरह से आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर पाते। अगर आपको दिल्ली जाना है तो टिकट में जो खिड़की है उसमें जाकर कहना चाहिए स्पष्ट रूप से मुझे दिल्ली जाना है, और जितना टिकट का पैसा होता है ठीक उतना ही देना पड़ेगा, तब आपको सही टिकट मिल जाएगा। और उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि टिकट खरीद कर आप घर में आराम से सो जाए, जब ट्रेन का समय हो जाता है तो ट्रेन में बैठना भी पड़ा है, और बैठने के बाद में ट्रेन में बैठे रहना है, तब जाकर धीरे धीरे से आप दिल्ली पहुंचते हैं। देखिए दिल्ली पहुंचने के लिए कितना समय लगता है, कितने परिश्रम करना पड़ता है। तो ठीक उसी प्रकार से अगर हमें यह ज्ञान हो जाता है कि परम कौन है, सबसे परम सत्य कौन से है, संभवान ये शब्द का प्रयोग परिषद ने किया है,
अगर झूठ निकालना है कि परम सत्य क्या है, अगर परम सत्य की उपासना करनी है, संभव मतलब जिनसे सत्य उत्पन्न होता है, जिनसे सत्य का पालन पोषण होता है और फिर विनाश के बाद में जिनमें सब कुछ लीन हो जाता है, वो है संभव। ये बिना प्रकृति पर बनाया है, इसीलिए परम सत्य क्या है ये सभी को खोजना है। तो श्रीमद् भागवत में क्या लिखा है, श्रीमद् भागवत में तो बहुत ही स्पष्ट रूप से इसका ज्ञान दिया हुआ है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादस्यतः, पहले ही श्लोक ओम नमो भगवते, हम भगवान की वंदना करते हैं लेकिन वो भगवान का नाम क्या है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो भगवान का नाम भी दिया है। केवल ऐसा नहीं है कि केवल ओम नमो भगवते नहीं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ताकि पहले ही लाइन में श्रीमद् भागवत के स्पष्ट रूप से बताया गया है कि परम भगवान कौन है। और फिर उनकी परिभाषा दी गई है, जन्म आदि सत्य कथा, जिनके सारे सृष्टि का सृजन होता है, जो सृष्टि का पालन पोषण करते हैं और जो विनाश करके भी सारे सृष्टि को अपने आप में सम्मिलित कर देते हैं, ये है परम सत्य ओम नमो भगवते, और इनका नाम है वासुदेव। इसी प्रकार से आगे चल के श्रीमद् भागवत में सुंदर दो श्लोक हैं जो शुद्ध गुरुस्वामी नैव शरण्य में एकत्र हुए ऋषियों को सुनाते हैं। वासुदेव परा वेद, वासुदेव परा मुख, वासुदेव परा योग, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञान, वासुदेवं परं तप, वासुदेव परो धर्म, वासुदेव परादरी। तो यहां शुद्ध गोस्वामी स्पष्ट रूप से बता रहे वासुदेव परा वेदा, वेदों को पढ़ने का जानने का उद्देश्य है कि आपको कृष्ण को समझना चाहिए, वासुदेव को समझना चाहिए, वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, जो भी आप यज्ञ करते हैं उनके फल देने वाले वही वासुदेव हैं। वासुदेव परा योगा, जो भी योगाभ्यास करते हैं, योगाभ्यास का अंतिम उद्देश्य ही उन्हीं की प्राप्ति करना है, क्योंकि वासुदेव। और वासुदेव परा क्रिया, हमारे कार्यों का फल भी वही देते हैं और कार्य के फल से उन्हीं को प्रसन्न करना। वासुदेव परम ज्ञान, ये वासुदेव ये कृष्ण ही सबसे ऊंचे ज्ञान है, इनको जानना ही परम ज्ञान है। वासुदेव परम तपा, तपस्या करने का फल भी वो देते हैं और तपस्या करते ही कृष्ण की प्राप्ति, वासुदेव की प्राप्ति। वासुदेव परो धर्म, धर्म का मतलब है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, उनके प्रति प्रेम की प्राप्ति करना। वासुदेव परम गति, अंतिम गति हमारे जीवन में सबसे ऊंची जो गति है वो कितनी है, वासुदेव। पहले भी श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि कोई और परम गति है, कोई और परम ज्ञान है, कोई और परम तपन है, केवल वासुदेव श्री कृष्ण। तो श्रीमद् भागवत का निष्कर्ष स्पष्ट है कि परम सत्य श्री कृष्ण। खुद श्री कृष्ण गीता में भी बताते हैं, अहम सर्वस्य परो वक्तः सर्वं करोमि इति मत्वा भजन्ते मां तदभाव समर्पिता। सब कुछ मुझसे उत्पन्न होता है और जो उसको अच्छी तरह से जानते हैं उन्हें भाव समर्पिता, भाव भरे हृदय से वो मेरी भक्ति करते हैं, निरंतर करते हैं। और अर्जुन भी यही बताते हैं, परम धर्म परम धाम पवित्रम परम भगवान पुरुषम शाश्वतम देव्य आदिदेव मगतिनो, कि हे प्रभु आप ही परम धर्म है, आप ही परम धाम है, आप ही परम पुरुष है, आप ही परम सत्य है, सब कुछ आपसे ही आता है। तो गीता और भागवत में स्पष्ट है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, कोई तर्क वितर्क की बात नहीं है। लेकिन फिर भी जिनको मालूम नहीं है उनको भी एक आदेश है शास्त्र में बताया कि आपको कोशिश करना चाहिए ढूंढने के लिए। हो सकता है किसी ने गीता नहीं पढ़ा हो, सुना नहीं हो, भागवत भी सुना नहीं हो, पढ़ा नहीं हो, तो उनके लिए क्या आदेश है? कि परम सत्य क्या है वो तो भूल, सत्य ऊंचे स्वामी कौन है तो भूल, और ये मनुष्य जीवन में इतनी गला है कि सबसे ऊंचे सत्य सबसे बड़े स्वामी कौन है उनको सुन। ये छोटी सी कहानी आप जानते हैं, एक बार एक व्यक्ति बहुत इच्छुक था कि वो बहुत बड़े आदमी की सेवा करें, तो अपने गांव में जाकर पंचायत का जो प्रमुख था उसकी सेवा करने लगा, और उसने देखा कि पंचायत का प्रमुख जो है वो कहीं और जा रहा है, तो उन्होंने पूछा कि आप कहाँ जाते हो? मैं तो तहसीलदार के पास जाता हूँ। क्या तहसीलदार आपसे बड़ा है? मेरा बॉस है। अच्छा, तुम्हें बॉस की सेवा करो, मुझे सबसे बड़े आदमी की सेवा करो। तहसीलदार के पास गया है, वो तहसीलदार की सेवा कर रहे, और देखा कि तहसीलदार कहीं हर हफ्ते जाता है, आप कहाँ जा रहे हो? आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जाए, ये भी आपका बॉस है, ये मेरा बॉस है, उनके पास जाए, उनके वहां पर जाए उनकी सेवा, और देखा कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी कहीं और जाना, और इस प्रकार से आगे जाते 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 देखा कि सीधे वो राजा के पास पहुंच गए, तो राजा की सेवा में किसी न किसी तरह से सिद्ध हो गया ये व्यक्ति, और देखा कि राजा भी कहीं आ रहा है, अब तो अनुभव क्या हो रहा है, राजा भी जो सारे देश का सबसे प्रमुख आदमी है वो भी कहीं किसी की सेवा करने जा रहा है, तो सुन सुन के देखने लगे कहाँ जाता है ये राजा, तो जाके देखा कि राजा जंगल में गए हैं, और जंगल में वहां पे एक सुंदर छोटी सी इमारत है, और वहां पे कोई मूर्ति है, और ये राजा जो है जंगल में प्रणाम कर रहे हैं, तो संचलित हो गया। तो राजा से पूछा कि ये भी आपसे बड़े हैं क्या? हाँ, ये सबसे बड़े, इनसे तो कोई बड़े नहीं है, सबसे बड़े हैं ये, सबसे बड़े, तो उससे शर्म नहीं है। इस प्रकार से मनुष्य जीवन का उद्देश्य है कि भूलना, सबसे बड़ा आदमी कौन है, और कौन है सबसे बड़ा आदमी? कृष्ण भगवान ही सबसे बड़े, और इसलिए गीता में भगवान बताते हैं कि मुझे ढूंढना ही यही जीवन का परम कार्य है। मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है कि हम कृष्ण को ढूंढ निकालें, इस बार हम कृष्ण को ढूंढ चुके हैं, कल्पना कभी कभी नास्तिक बन जाते हैं, किसी जन्म में देवी देवताओं की उपासना करते हैं, किसी जन्म में भूत प्रेत शासन की उपासना करते हैं, ऐसे अलग अलग उपासना करते करते हम कृष्ण को भूल चुके हैं, लेकिन यहां पर बताया जाता है कि कृष्ण को हमें ढूंढ निकालना चाहिए। दसवें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, नमे विदुरना प्रभव महर्षि हम आगे देवाना वो कहते हैं कि सारे बड़े बड़े ऋषि बन हैं, देवता हैं, वो भी मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं सबसे जानता, क्यों? क्योंकि मैं सबका आदि, मैं हम आगे ही देवाना महर्षि नाम से दर्श है। इसलिए कभी कभी बड़े बड़े ऋषि बड़े बड़े देवी देवता में भ्रमित हो जाते हैं कि भगवान कौन है, परम सत्य कौन है, ये जानने के लिए। एक बार ऐसे हुआ कि देवताओं में और ऋषि मुनियों में एक वार्तालाप और संवाद चल रहा था कि सबसे बड़े कौन है, और सबसे बड़े देवता नेति नेति करके ये नहीं वो नहीं करके तीन तक पहुंच गए, शिव ब्रह्मा और विष्णु। अब इन तीनों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? ये ब्रह्मा है, और अलग अलग मत थे, कोई ऋषि कहता था ऋषि जी, कोई देवता कहते थे नहीं नहीं ब्रह्मा जी, और कोई कहता था नहीं नहीं विष्णु है, तो क्या किया जाए? तो उन्होंने भृगु मुनि को चुना कि भृगु मुनि जी आप ये ढूंढ कर लाइएगा, मैं थोड़ा कीजिएगा रिसर्च करके आइए कि वास्तव में इन तीनों में से प्रमुख कौन है। तो भृगु मुनि गए पहले ब्रह्मा जी के पास, अब ब्रह्मा जी वास्तव में भृगु मुनि के पिता होते हैं, और वैदिक पद्धति ये होती है कि जब पिता को पहले देखते हैं तो उनका सम्मान करना चाहिए। तो बहुत दिनों के बाद मिले भृगु मुनि ब्रह्मा जी से, और जब मिले तो उनको सम्मान नहीं किया, तो ब्रह्मा जी को बात करना है, लेकिन अपने आप को रोक दिया लेकिन अगर आंखों से आंखें बड़े हो गए और आंखें जब तुरंत बड़े हो गए क्रोध से, तो रघुवीर को पता चल गया कि ये क्रोधित हो गए हैं,
कि ये क्रोधित हो गए हैं, रजगुण के प्रभाव में आ गए हैं। इसीलिए फिर वो आगे गए, ब्रह्मा शिव जी के पास में गए। अब शिव जी भी ब्रह्मा जी के पुत्र होते हैं श्रीमद् भागवत के अनुसार, तो शिव जी भी भृगु मुनि के भाई लग जाते हैं। तो जब भाई दूसरे भाई से मिलता है तो क्या करते हैं, आलिंगन करते हैं। तो शिव जी ने भी भृगु मुनि को बहुत दिनों के बाद में देखा, तो शिव जी बड़े प्रसन्न हुए और हाथ यूं आगे करके आलिंगन करने के लिए आए भृगु मुनि के लिए। तो भृगु मुनि ने क्या कहा, छी 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 छी, मुझे छुओ मत, देखो इतना गंदा शरीर है, सारे स्मशान भूमि का जो धूल है वो सब तुम्हारे शरीर में है, और जहरीले सांप भी है, और ऐसे गंदी अवस्था में मैं तुम्हें क्यों आलिंगन करने जाऊं। तो शिव जी को बड़ा गुस्सा आया, और शिव जी तो अभी उसी क्षण भृगु मुनि को खत्म करने वाले थे, लेकिन पार्वती देवी ने कहा, प्रभु अभी छोड़िए, आपके भाई हैं, ये ठीक नहीं है, आपको अपमान सहन करना चाहिए, आप तो धीर हैं। तो शिव जी ठंडे हो गए, लेकिन भृगु मुनि ने समझ लिया कि हाँ, ये तो भगवान परम भगवान नहीं हो सकते। आखिर में विष्णु बचे, तो चले गए वो क्षीर सागर में, श्वेत द्वीप में, और वहां पर विष्णु अपने अनंत शेष शैया में विश्राम कर रहे थे योग निद्रा में, और लक्ष्मी देवी उनके पैर दबा रही थी। फिर भृगु मुनि ने सोचा कि अभी जाके इनकी परीक्षा लेनी चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, तुरंत जाके लात मार दी भगवान विष्णु के छाती पर। तो ये देखा तो लक्ष्मी जी हैरान हो गए, लेकिन विष्णु ने क्या किया, विष्णु उठे और तुरंत भृगु मुनि के पैर को उन्होंने चरणों को अपने हाथ में लिया और मालिश करने लगे। देखो मेरा जो वक्षस्थल है इतना कठोर है, इतना कड़क है, हो सकता है कि आपके चरणों को चोट पहुंची हो, तो मैं थोड़ा मालिश कर देता हूं ताकि जो चोट आपको पहुंची है वो ठीक हो जाए। उधर लक्ष्मी देवी आग बबूला हो रही थी, लेकिन इधर विष्णु उनके चरण मालिश कर रहे हैं। तो ये देख लिया भृगु मुनि ने, समझ लिया कि हाँ यही सबसे परम है, इनसे विष्णु से बड़ा कोई नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से भृगु मुनि ने जाकर अपना रिपोर्ट दे दिया कि मेरा रिपोर्ट यह है कि विष्णु ही परम है। तो इस प्रकार से सारे देवतागण और ऋषिगण संतुष्ट हुए, और ठीक से वो जान गए कि वास्तव में सबसे बड़े या सबसे जो ऊंचे सत्य हैं वो कौन है। तो इस प्रकार से मनुष्य जीवन में हमें यही ढूंढ निकालना है, लेकिन भृगु मुनि और अन्य देवी देवता और ऋषि मुनियों की तरह हमें ब्रह्मांड भर में घूमने फिरने की आवश्यकता नहीं है, हमें कोई संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों, कृष्ण पहले से रिपोर्ट दे चुके हैं अपने, और व्यास देव जी भी रिपोर्ट दे चुके हैं भागवत में, श्रीमद् भगवत गीता में, और ये स्पष्ट रूप से बताया हुआ है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें सीधे सीधे भगवान श्री कृष्ण के शरण में ही जाना चाहिए। अभी इस श्लोक में गीता के यहां बताया गया है कि अलग अलग उपासनाओं की अलग अलग गति होती है, और जैसे इस उपनिषद श्लोक में हमने कहा कि कृष्ण है परम जो आदि पुरुष है, सब कुछ उन्हीं से आता है। अगर कृष्ण या विष्णु की पूजा करेंगे तो एक गति की प्राप्ति होगी, और अगर किसी और की पूजा करेंगे कृष्ण और विष्णु को छोड़कर तो और गति की प्राप्ति होगी। कृष्ण और विष्णु की भक्ति करने से संसार के परे हम भगवान के धाम में चले जाएंगे, और इनको छोड़कर किसी की भी उपासना हमने अगर की तो इस भौतिक संसार में ही हमें जन्म लेना होगा। श्रीमद् गीता भगवत गीता में भी श्री कृष्ण बताते हैं, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्थ मध्य तिष्ठानि राजसः जघन्य गुणवृत्तस्थ अधो गच्छन्ति तामसः। जो सत्वगुण में स्थित होते हैं, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्थः, ऊर्ध्वं मतलब ऊपर, वो स्वर्ग लोक में देव लोक में जन्म लेते हैं जो सत्व गुण में होते हैं, और जो रजगुण में होते हैं मध्यस्थ वो बीच में रह जाते हैं, अर्थात पृथ्वी लोक पर। अर्थात हम सब रजगुणी लोग हैं, ज्यादा पृथ्वी लोक में ज्यादा से जो संख्या है रजगुणी लोगों की होती है। जघन्य गुण वृत्ति स्थ, इनको जघन्य गुण अर्थात तमोगुण का जिन्होंने आश्रय लिया है वो कहां जाते हैं? अधो गच्छन्ति तामसा, वो नरक लोक में जाते हैं, नीचे चले जाते हैं। तो इस प्रकार से जैसे जिस जिस गुण में हम स्थित होते हैं सत्व गुण रजगुण तमगुण, ऐसे ऐसे अलग अलग स्थानों की गतियों की प्राप्ति होती है। अब इस श्लोक में बताया गया है चार प्रकार की उपासनाओं का वर्णन यहां पर है। कौन से हैं चार प्रकार की उपासना जिनका वर्णन इस श्लोक में है? पहले से शुरू कीजिए, देवी देवताओं का, दूसरा पितरों का, तीसरा भूत प्रेत पिशाचों का, चौथा श्री कृष्ण का। हम कौन से श्रेणी में आते हैं? चौथे श्रेणी में। कम से कम प्रयास तो करना चाहिए चौथे श्रेणी में रहने के लिए, और चौथे श्रेणी के अलावा किसी और श्रेणी में नहीं जाना चाहिए। इस श्रेणी में रहते हुए कहीं इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो केवल आखिरी उपासना करने से अर्थात श्री कृष्ण की उपासना करने से हम ये संसार के परे जा सकते हैं, इस संसार को पार करके भगवान के धाम में जा सकते हैं। पहले तीन प्रकार की उपासना करेंगे तो क्या होगा? इस संसार में ही रहना पड़ेगा। इसलिए कृष्ण की उपासना करने में और देवी देवताओं की उपासना करने में जमीन आसमान का अंतर है, बहुत अंतर हो जाता है। क्यों? क्योंकि देवी देवता या अन्य लोगों की उपासना करने से भौतिक ब्रह्मांड में अटके रहेंगे, कृष्ण विष्णु की उपासना करेंगे बाहर चले जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। इसलिए भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, आ ब्रह्म भुवना लोक पुनः आवर्तिनो अर्जुन माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्म लोक से लेकर पाताल लोक तक यहां सब क्या है? जन्म और मृत्यु के स्थान है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये चार प्रकार के दुखों का दर्शन या अनुभव हमें करना पड़ता है। लेकिन माम उपेत्य तो कौन्तेय, हे कौन्तेय, लेकिन जो मेरे प्राप्त मुझे प्राप्त कर लेता है पुनर्जन्म न विद्यते, जो मुझे प्राप्त करता है मेरे धाम में जाता है मेरी भक्ति करने से, उसे पुनः जन्म ये संसार में नहीं लेना पड़ता। और भगवान बताते हैं, माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते दुखालय अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः समसिद्धिं परमां गता। वो कहते हैं कि जो मेरी प्राप्ति करता है कभी भी संसार में जन्म नहीं लेता, और ये संसार क्या है? दुखालयम अशाश्वतम, अर्थात कृष्ण या विष्णु को छोड़कर आप किसी की भी उपासना करेंगे तो आपको ये दुखालयम अशाश्वतम में रहना पड़ेगा। जब तक कि आप कृष्ण या विष्णु के शरण में नहीं जाते तब तक ये भौतिक संसार में दुखालयम अशाश्वतम में घूमते फिरते रहना पड़ेगा, आते ऊपर जाना नीचे जाना ऊपर नीचे गोल गोल फिरते रहना पड़ेगा, कभी इस योनि में कभी उस योनि में, कभी इस ब्रह्मांड में उस ब्रह्मांड में, इस लोक पे उस लोक पे, यह भ्रमण चलता रहेगा। इसीलिए कृष्ण की उपासना करना बड़ा आवश्यक होता है। कृष्ण की उपासना करने से हमें अंतिम गति परागति ही की प्राप्ति होगी, जिसके बाद में हमें सच्चिदानंद स्थान मिल जाएगा। सच्चिदानंद स्थान किसी और की उपासना करने से नहीं मिल सकता है। ये संसार में अनेक प्रकार की गतियां होती हैं, जैसे कीट गति है, मृग गति है, पशु गति, पक्षी गति, मनुष्य गति, भूत प्रेत गति, देव गति, और आखिर में वैकुंठ गति। तो हमें कहां जाना है? हमें वैकुंठ गति में जाना है। अन्य अष्ट गति बताए जाते हैं, आठ गतियां होती हैं, उनमें से सात गतियों को हमें कुछ नहीं लेना देना नहीं है, हमें केवल एक गति चाहिए, वो क्या है? वैकुंठ गति, कृष्ण के पास जाना है, क्योंकि कृष्ण के पास जाने से ही जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा मिल सकता है। इसीलिए हमें देवी देवताओं की उपासना करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अगर हमें जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा चाहिए तो कृष्ण के पास जाना चाहिए। अगर हम देवी देवताओं की पूजा अभी भी कर रहे हैं कृष्ण का शरण लेने के बाद में भी, इसका मतलब है कि कृष्ण के प्रति हमारी श्रद्धा पूरी नहीं है, या तो फिर हमें यह श्रद्धा नहीं है कि यह जगत दुखालयम अशाश्वतम है। अगर हम समझ लेते हैं कि यह दुखालयम अशाश्वतम है तो हम ये जगत में रहना ही नहीं चाहेंगे, और रहना ही नहीं चाहेंगे तो ये सोचेंगे कि कौन सा सबसे आसान उपाय है, और एकमात्र उपाय है कृष्ण का शरण लेना। तो जो व्यक्ति ये संसार में रहना नहीं चाहता है उसे कृष्ण का शरण लेना ही चाहिए, कोई उपाय नहीं, कोई और चारा नहीं है। ऐसे नहीं कि इनकी भी शरण में जाएंगे, उनकी भी शरण में जाएंगे, कृष्ण की भक्ति करेंगे लेकिन थोड़ी बहुत दुर्गा की भी करेंगे, काली की भी करेंगे, शिव जी की भी करेंगे, नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान ने कह दिया है गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे शरण ले लो, साथ साथ शिव जी की भी ले लो, दुर्गा देवी की भी ले लो, नहीं, केवल मेरे शरण में रहना, माम एकम शरणम व्रज। इसलिए हमें इस श्लोक को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि भगवान ने क्या कहा है। अलग अलग उपासनाओं की अलग अलग गति होती है। अगर हमें देवी देवताओं की उपासना से अभी भी आसक्ति है तो भगवान के धाम में नहीं पहुंच सकते। जिस हद तक आसक्ति है देवी देवताओं से, उस हद तक हमें ये संसार में अटक कर ही रहना पड़ेगा। अगर हमें संसार के परे जाना है तो देवी देवताओं के प्रति आसक्ति को छोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि देवी देवताओं का सम्मान हमें नहीं करना चाहिए। सम्मान करना एक बात है, लेकिन उनके भक्त बनना और उनकी उपासना करना और उनके पूजा के लिए विधि विधानों का पालन करना वो दूसरी बात है। ये चीजें करने की आवश्यकता कृष्ण भक्त के लिए नहीं है। इसलिए हमें गीता, भागवत और प्रभुपाद की अन्य किताबों को ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे सब पढ़ने से श्रद्धा बढ़ती है। श्रद्धा शब्द विश्वास का है, सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कोयले सर्व कर्म कृत होए। श्रद्धा क्या चीज है? श्रद्धा वो दृढ़ विश्वास है कि अगर मैं कृष्ण की सेवा करूंगा तो मुझे और कोई भी चीज करने की आवश्यकता नहीं है, और किसी भी देवी देवता की उपासना करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए कितना स्पष्ट है, फिर भी हमारे भक्त कभी कभी कितना हिचकिचाते हैं, घबराते हैं, कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं लेकिन देवी देवताओं की उपासना छोड़ेंगे कैसे? अगर वो गुस्से हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे तो क्या होगा? लेकिन कृष्ण क्या बताते हैं, मा शुचः, कि डरो नहीं, चिंता बिल्कुल नहीं करो, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, सारे पापों से गलतियों से मैं मुक्ति दिला करा दूंगा तुम्हें, तुम क्यों चिंता करते हो? तो जब कृष्ण यह गारंटी हमें दे रहे हैं कि देवी देवताओं की उपासना को त्याग कर उनके शरण में जाने में कोई खतरा नहीं है, तो फिर और कौन सी गारंटी हमें चाहिए, और क्यों हिचकिचाहट होती है हमें? इसलिए हमें पूरे हृदय से अब श्री कृष्ण के शरण में जाना चाहिए, और इसलिए चैतन्य महाप्रभु आए हैं सिखलाने के लिए। वही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं सिखलाने के लिए क्या शरणागति क्या है, कृष्ण के शरण में जाने का मतलब क्या है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु आते हैं ना, तो कैसे आते हैं? हाथ ऊपर करके आते हैं। हाथ ऊपर करने का मतलब क्या है? जैसे अगर आप किसी ने आपसे कोई पैसा उधार लिया है और फिर आप पैसा मांगने जाते हो, हाथ ऊपर कर लेते हैं, इसका क्या मतलब? अभी आप हमारे साथ जो भी कीजिए, हमारे जेब खाली है। इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु वही श्री कृष्ण है, उन्होंने सिखलाया है। जब कृष्ण के दरबार में जाओगे, कृष्ण के चरण कमलों में जाओगे हाथ ऊपर करके, और किसी के शरण न लेते हुए, और मेरे पास कोई पैसा नहीं, बल नहीं, ये नहीं, वो नहीं, बैंक बैलेंस नहीं, शेयर सर्टिफिकेट नहीं, पुलिस नहीं, सेना नहीं, कुछ नहीं, खाली हाथ आया हूं क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है, जो भी मेरा है वो आपका ही है, इसलिए हाथ ऊपर करके मैं आया हूं, ये भावना है। तो जो बात को कृष्ण ने सिखाया अर्जुन को, उसका आचरण करके दिखलाया, वही श्री कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर, इसलिए हम चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, गौड़ीय वैष्णव परंपरा में हम आते हैं, इसलिए हमें अनन्य भाव से कृष्ण का शरण लेना चाहिए और किसी देवताओं के प्रति अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन उनकी उपासना पूजा भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आज से सब अपने हृदय में दृढ़ विश्वास रखते हैं कि कृष्ण ही एकल ईश्वर, कृष्ण आर सब भृत्य, जय जाय छे नाचाय ते ताय छे करे नित्य, एकमात्र कृष्ण अकेले ईश्वर हैं, बाकी सब भृत्य हैं, उनके सेवक हैं, और वो जैसे नचाते हैं बाकी सब नाचते हैं। तो सभी के हृदय में आज से दृढ़ विश्वास होगा कि एकमात्र कृष्ण के शरण में ही हमें जाना है और किसी के शरण में हमें नहीं जाना है। कितने भक्तों के हृदय में अभी तक संशय है, हाथ ऊपर कीजिएगा, संशय है नहीं? तो आज से सब एकाग्र चित्त से कृष्ण की भक्ति करेंगे, कितने प्रयास करेंगे एकाग्र चित्त से कृष्ण की सेवा करने के लिए, अनन्य भाव से, बस यही चाहिए। कृष्ण मिल गए तो और कोई भी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, और कोई भी देवी देवता किसी की भी आवश्यकता नहीं है। जैसे अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, नया मंदिर बना रहे हैं, एक बिरला मिल गए तो फिर 5-10 रुपए दान देने वालों की आवश्यकता नहीं है ना, है क्या? बिरला साथ में आ जाए सब कुछ हो जाएगा, टाटा आ गए साथ में तो दूसरों को टाटा कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से कृष्ण आ गए, सागर आ गए, तो कुएं की क्या जरूरत है? इसलिए श्रद्धा हमें रहनी चाहिए, हमारे अंदर रहनी चाहिए श्रद्धा। और हम डावाडोल कब हो जाते हैं? जब हम ठीक से श्रवण नहीं करते, ठीक से ग्रंथों का अध्ययन नहीं करते, ठीक से जाप नहीं करते, भक्तों का संग ठीक से नहीं करते, अभक्तों का संग ज्यादा करते हैं। ऐसा जब हम करते हैं तो धीरे धीरे से हमारी श्रद्धा में धक्का बैठता है कि अरे ऐसा करेंगे तो क्या होगा, वैसा करेंगे तो क्या होगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, देखो अपने संशय को हृदय से निकालो, गोदरेज अलबायरा में सेफ डिपॉजिट वार्ड में डालो, चाबी डाल के भूल जाओ उसको। जब कृष्ण के शरण में आए हो तो सब हाथ ऊपर करके हमें एक ही काम करना है, वो क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो कोई प्रश्न, कोई टीका, टिप्पणी बने? पहले नहीं थे ऐसे ऋषि, थे वो, लेकिन बड़े वैष्णव नहीं थे, तो आया क्योंकि उन्होंने देखा कि उनका ही भाई है और उनका ही भाई उनको सम्मान नहीं कर रहा है, तो उन्होंने सोचा कि ये उनके लिए उचित व्यवहार नहीं है। जिस प्रकार से शिवजी ने दक्ष को दंड देना चाहा, दक्ष प्रजापति को, उसी प्रकार से शिवजी भृगु मुनि को भी दंड देना चाहते थे उनकी भलाई के लिए, ताकि वो ऐसा बुरा व्यवहार नहीं करें, क्योंकि वैष्णव के प्रति बुरा व्यवहार करने से जो व्यक्ति बुरा व्यवहार कर रहा है उसका नुकसान होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे खिलाफ अगर कोई ऐसा करे तो हम सोचें कि उसको बुरा परिणाम से बचाने के लिए हमें ही दंड देना होगा, नहीं। शिवजी ऐसे स्तर में हैं जो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हमें नम्रता से स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, और कोई प्रश्न? ऐसा है कि अगर बेलगाम से दिल्ली जाना है तो दिल्ली का ही टिकट लेना होगा, दूसरे टिकट लेंगे तो शायद आप बम्बई पहुंच जाएंगे, कोल्हापुर पहुंच जाएंगे, तिरुपति पहुंच जाएंगे, कहीं कलकत्ता पहुंच जाएंगे। तो ये ऐसे है कि जैसे देवी देवताओं की पूजा की, तो वैकुंठ न पहुंचते हुए आप कहीं इंद्रलोक चले जाएंगे, पितृलोक चले जाएंगे, चंद्रलोक चले जाएंगे। लेकिन वैकुंठ लोक जब पहुंच गए, फिर भी वैकुंठ लोक के अंदर तो बहुत विविधता है। जैसे एक बार आप दिल्ली चले गए तो आप जाकर वो शायद ताजमहल होटल में रह सकते हैं, लेकिन हम जाकर धर्मशाला में रहेंगे, अपने अपने कैपेसिटी के अनुसार, लेवल के अनुसार। तो दिल्ली दोनों जा रहे हैं साथ में, लेकिन दिल्ली में जाने के बाद में एक आदमी जाता है ताजमहल होटल में और दूसरा जाता है धर्मशाला में। और ताजमहल होटल में जाने के बाद में भी अगर दो आदमी जाते हैं, हो सकता है कि एक आदमी सादा रूम ले ले वहां, सब सस्ते से सस्ता रूम जो ताजमहल होटल में है, और दूसरा व्यक्ति सबसे बड़ा रूम जो राजाओं के लिए होता है वो ऐसा रूम में चले जाए। तो यहां से, यहां की दृष्टि से देखा जाए तो तीनों लोग दिल्ली गए हैं, लेकिन तीनों लोग उन जब दिल्ली पहुंचे तो दो ताजमहल गए, एक धर्मशाला गया। लेकिन ताजमहल पहुंचने के बाद भी दोनों की अलग अलग और गति हो गई। उसी प्रकार से भौतिक जगत के दृष्टिकोण से वैकुंठ एक है, जैसे दिल्ली एक है, लेकिन वैकुंठ में प्रवेश करने के बाद में विष्णु के भक्त अलग अलग जगह जाएंगे, नारायण के भक्त अलग जगह जाएंगे, राम के भक्त अलग जगह जाएंगे, कृष्ण के भक्त गोलोक वृंदावन जाएंगे। ठीक है, गोलोक वृंदावन, ताजमहल होटल के सबसे बड़े कमरे में हमें जाना है। चलेंगे ना सब लोग? फिर इतने उदास क्यों लग रहे हैं सर? हाँ, खर्चा बहुत है, इकट्ठा करने के लिए तो आए हैं सब इधर, तो मिट जाएगा। हाँ, घर में गणपति लाना जरूरी है कि नहीं? गणेश चतुर्थी के समय जरूरी नहीं है, नहीं आवश्यक है, तो समझाइए। आप कितने दक्ष हैं समझाने में, ये आपके ऊपर है। तो ऐसा कीजिए, उनको मंदिर में ही ले आइए। तो फिर अच्छी तरह से समझा कर अपने अपने निर्णय में स्थिर रहना चाहिए, आवश्यकता नहीं है, फिर खिचड़ी हो जाता है। ये भी करें, वो भी करें, ये पूजा वो पूजा, ये होम वो होम, कितने सारे चीजें करते रहेंगे और कृष्ण साइड में रह जाएंगे। तो बोलिए कि कृष्ण की भक्ति नहीं करते तो इससे 10 गुना ज्यादा दुर्घटना आती है। कृष्ण भक्त बन गए इसलिए इतना कम आया है, है ना? ये बताइए, और बहुत कुछ आने वाला था, लेकिन कृष्ण भक्त बने हैं इसलिए अभी इतना मिलने के बजाय थोड़ा इतना मिला है। क्या जो गणेश की पूजा करते हैं उनके जीवन में दुर्घटना नहीं होती है? इसलिए हमें उनको ज्ञान देना चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि जो दुर्घटना कर्मों के फल से आने वाला है, कर्मों के बल पे आने वाला है, वो तो आएगा, तो इससे हमें विचलित नहीं होना है। लेकिन अभी हमें ऐसे आध्यात्मिक कार्य क्रियाएं करनी चाहिए जिनसे हमेशा के लिए इस कर्म बंधन से हम मुक्त हो सके। जैसे मंदिर के ऊपर, दरवाजे के ऊपर शिवजी एक शुभ लक्षण करके रखते हैं, हम उनको सम्मान करके चले जाते हैं, लेकिन मंदिर के अंदर गणेश चतुर्थी के समय हम उनकी मूर्ति लाकर पूजा नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि गणेश जी भक्ति में जो भी विघ्न है उनको नष्ट करते हैं। लेकिन इस दृष्टि से गणेश चतुर्थी में कितने लोग गणेश जी की उपासना करते हैं? गणेश चतुर्थी में क्या मांगते हैं? दुख हरता सुख करता है, हमको सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए, संसार का भोग चाहिए। फिल्में गाने गाते हैं। तो इसलिए जो लोग गणेश की पूजा करते हैं उनको ये भी नहीं मालूम कि गणेश क्या है, कृष्ण कौन है, उनका संबंध क्या है, ये ज्ञान नहीं होता लोगों में, ज्यादातर ज्ञान नहीं होता है, इसलिए वो ऐसे ही अंधश्रद्धा से करते हैं पूजा। इसलिए वैष्णव भक्तों को ऐसे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, पूछते हैं प्रश्न। तो सभी लोग मन में क्लियर हो गए, तो हरे कृष्ण लिखते हैं। जो कृष्ण भक्त नहीं है उनके लिए ये ठीक है, लेकिन जब कृष्ण भक्त हैं तो और किसी और की आवश्यकता नहीं है। उनका आशीर्वाद ले सकते हैं, अवश्य ले सकते हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद लेना और कर्म कांड विधि के अनुसार उनकी उपासना करना ये बिल्कुल अलग है, अलग बातें हैं। इसलिए इन कर्मकांड विधि विधानों में श्रद्धा हमें नहीं रखना है, हमें श्रद्धा केवल भक्ति के विधि विधानों में रखना है। भक्ति मतलब केवल कृष्ण के प्रति होता है, इसलिए गणेश जी को सम्मान देकर, वैसे गणेश चतुर्थी के दिन हम मंदिर में आकर हम कीर्तन कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, गणेश जी की आशीर्वाद के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और कृष्ण का गुणगान कर सकते हैं। कृष्ण का गुणगान करेंगे तो गणेश जी खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। केवल गणेश जी की पूजा करेंगे तो उसमें उतना प्रसन्न नहीं होते गणेश जी। जब आप कृष्ण भक्त बनते हैं तो गणेश जी ज्यादा प्रसन्न होते हैं, इसलिए घर में गणेश जी की मूर्ति लाने की आवश्यकता नहीं है गणेश चतुर्थी के समय, क्योंकि इसमें कोई भक्ति का कोई संबंध नहीं है, ना ही गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का कोई संबंध है, ना ही कृष्ण का कोई संबंध है इससे। ये सही है, श्रीमद् भागवत ही नहीं, सारे पुराण, वेद, महाभारत, ये सारे चीजें, सारे ग्रंथ हैं, ये गणेश जी ने लिखी हैं। वो जगत के सबसे पहले स्टेनोग्राफर हैं, डिक्टेशन लेते थे, वेद व्यास भी बोलते गए और गणेश जी लिखते गए। आप बद्रिकाश्रम जाएंगे तो उनके दोनों के गुफे आप देखेंगे, वेद व्यास जी का गुफा इधर है और 50 मीटर दूर वहां गणेश जी का गुफा है, गणेश जी लिखते रहते थे। वो भी भगवान के भक्त हैं, ब्रह्म संहिता में है ना कि वो हमेशा भगवान के चरण कमलों में अपने इसमें क्या कहते हैं उन लोगों, चुंबलाय क्या कहते हैं, अपने दंत के ऊपर वो रखते हैं ताकि उनकी उपासना करते हैं। हमेशा गणेश जी का ध्यान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर रहता है, ये ब्रह्मा जी बताते हैं ब्रह्म संहिता में, हम रोज पढ़ते हैं सुबह को। तो सब गणेश चतुर्थी की बात समझ गए सब लोग, सभी लोगों को श्रद्धा हो गई कि अभी संशय है गणेश चतुर्थी के बारे में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भगवद गीता की, श्री राधा गोकुलानंद की जय।
राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर, जीवन मरण गति अरनाइ मो, जीवन मरण गति अरनाइ मो, Thank you. कालिंदीर फूले के लिए कदम मेरा बना कालिंदीर फूले के लिए कदम मेरा बना रतन वेदीर बस बोध जाना रतन बस रतन वेदीर पर बस बोध जाना श्याम गौरी अंगे दिबो चंदनेर गंध श्याम गौरी अंगे दिबो चंदनेर गंध दुलाब कबे हरिमुख चंद्र चमर दुलाब कबे हरिमुख चंद्र गाठिया माला के माला देह द्वार गले गाठिया माला ती माला देह द्वार गले अदर तुलिया दिव कठुर तंबूले अदर तुलिया दिव कठुर तंबूले ललिता विशाखादि यत सखी वृंद ललिता विशाखादि यत सखी वृंद आज्ञाय करीब सेवा चरणारविंद आज्ञाय करीब सेवा चरणारविंद कृष्ण चैतन्य प्रभु दशरनुदार श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दशरनुदार सेवाभिलाषा करे नरोत्तम दास सेवाधिकार करे सेवाभिलाषा करे राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर जीवन मरण गति अर नाही मो जीवन मरण गति अर नाही मो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी Thank you.